ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो क्रम अनुसार बोलने के प्रयास करेंगे, समय जब तक परमिशन देगा। तो आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। ये नवमी तिथि इसलिए प्रसिद्ध है, पवित्र है कि इसी तिथि को आश्रय करके भगवती श्री सीता देवी इस धरती पर प्रकट हुई थी, धरती के कन्या के रूप में। ऐसे जनक तनया जनक जी के बेटी के रूप में मानी गई। ऐसे भगवान जिस प्रकार अजन्मा है, भगवत शक्ति वो भी अजन्मा है, उनके साथ ही है। लेकिन भगवान जब लीला करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं तो उनके शक्ति भी तो प्रकट होगी, तो भी कुछ ना कुछ कारण बना करके वो भी आती है। जिस नवमी तिथि को धन्य करके भगवान राम भी चैत्र शुक्ल नवमी तिथि में प्रकट हुए, ठीक एक महीना के बाद वैशाख शुक्ल नवमी को भी उनके ही शक्ति श्री सीता देवी भी अपने आप को प्रकट की। ऐसे तो श्री राम के शक्ति के रूप में नित्य, भगवान नित्य हैं, उनके शक्ति भी नित्य है हमेशा। लेकिन ऐसे प्रकट होने के लिए किसी बहाना का आवश्यकता है, तो इसलिए कहते हैं कि एक स्त्री थी जिसका नाम थी वेदवती। उन्होंने खूब तपस्या की थी, उन्होंने चाहती थी कि इस संसार में जो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं उनको विवाह करने के लिए इसलिए तप कर रही थी। जितने बड़े बड़े देवता, गंधर्व, ऋषि, यक्ष सब आए, किसी को मनना। तो ऐसी किंवदंती है, रावण भी अपने दिग्विजय के तौर पर उनका पास, उनके ऊपर नजर पड़ी थी, उनको जा करके बोली। तो वो बोला कि नहीं, मैं तो केवल संसार में श्रेष्ठ, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं। और उनको बलात्कार करने के प्रयास की, तो उन्होंने रावण को अभिशाप दे करके स्वयं अप्रकट हो गई, स्वयं शरीर त्याग दी। अभिशाप दी कि मेरे कारण तुम्हारा भी वंश नाश होगा, तेरा भी वध होगा। तो उन्होंने ऐसे कथा है कि किस प्रकार से उनको रावण ने उसको मर जाने के बाद उनको ला करके कोई से पैकेट करके सोने के एक बक्सा करके अपने घर में रखी थी, क्योंकि साफ दिया कि इसी के कारण तो उसको मैं कहीं हो दोबारा ये ना करना, तुम किसी प्रकट हो जाए, घर में रखी थी लंका में ला करके। ऐसे कहते हैं कि एक दिन कुछ घर का काम सफाया, मंदोदरी ने देखी ये क्या है, उसको खोलते नहीं, इसे पड़ा हुआ है, पता नहीं कुछ होगा तो अच्छा चीज हो तो समुद्र में लेकर के उसे सौंप दी। अच्छा पवित्र चीज को तो पानी में डाल देते ना, भगवान की प्रसादी है सबको। तो बहते 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 कहाँ से जा करके मिथिला नगरी के भूमि पर वहाँ कई समा के रही, कितने दिन, वो कौन से कल्प में हुआ था पता नहीं। जब भी जनक महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं, शास्त्र में जनक महाराज का बड़े गुणगान किया जाता है कि विदेह है, विदेह राज, जो देह से परे, देहाभिमान से परे, उसको विदेह कहते हैं। विदेह तक पोस्ट है, विदेह जनक के पोस्ट है, मनुष्य अलग अलग पोस्ट को धारण करते हैं, विदेह अनेक हुए, जनक अनेक हुए हैं। इस जो भगवती सीता को प्रकट कराने वाले जो जनक जी थे उनका नाम था शिरध्वज, शिरध्वज विदेह राज जनक। इतने बड़े ज्ञानी के शिरोमणि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश मिथिला के ब्राह्मण ने उनके ऊपर नाराज हो गए। तो ब्राह्मण को उन्होंने फिर प्रसन्न करने का प्रयास किए, बोले क्या करूं प्रायश्चित बताया ना, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ कहाँ करूं, किस क्षेत्र में, ना जिस क्षेत्र को पवित्र माना जाएगा आप स्वयं अपने पति पत्नी के साथ कर्षण करेंगे भूमि को सोने के हल के साथ, पुरोहित ने हल को दबा के रखेंगे और आप दोनों को बैल नहीं लगेंगे, आप दोनों पति पत्नी उस हल को खींचेंगे, कर्षण करेंगे भूमि, इसी भूमि में यज्ञ होगा। तो श्रद्ध जनक महाराज पत्नी सुनेना देवी के साथ पुरोहितों के हल के वो भूमि को कर्षण कर रहे थे सोने की लंगल के साथ। तो हल के जो फाल होता नीचे उसको शीत कहते हैं, तो जब कर्षण कर रहे थे उस हल के फाल से स्पर्श से उसी भूमि में वो जो बक्सा प्रकट हुआ और उसे उठाकर देखे वो अभी बिल्कुल सद्यजात शिशु के रूप में उसको पाए। अनंत कोटि बाल सूर्य के प्रभाव के साथ भगवती सीता उस धरती पर प्रकट हुई धरती से। तो अभी जनक और सुनेना जी का कोई संतान नहीं थे, उन्होंने उनको अपने पालित कन्या करके पोषण करके रखी, तो इसलिए तभी से उनका नाम वैदेही जनक नंदिनी ऐसे करके मानते हैं। तो साक्षात लक्ष्मी थी, तो उनको ला करके उनके घर में पालन, उनके बाद में सुनेना गर्भवती हुई, उनके और एक बेटी हुई जिसका नाम थी उर्मिला, बड़े बहन अजोनिजा भगवती वैदेही। तो उनको अपने बेटी मान करके पालन करके अपने राजभवन में रखे थे जनक महाराज। वो जनक वंश में भगवान शंकर की धनुष जो किसी काल से विदेहराज निमि को प्राप्त हुआ था, उनके वंश परंपरा में बहुत बड़े भवन में यह धनुष रखा गया था, सहस्रवार धनुष, कई हजार सैनिक बड़े बड़े मंजूसार रखकर उनको उसको उठा नहीं सकते थे, इसे रखा था, अत्यंत भारी धनुष। तो अभी जनक नंदिनी सीता अभी छोटे बालिका ही थी, बालिका के ऊपर में खेल अपने सखियों के साथ खेलती थी, खेलते खेलते वो घर में कोई फूल लाना रखना ऐसे करती तो वो घर में चली गई धनुर्भवन में। इस दिन किसी सफाई करने के लिए खुला था, वो घर बंद रहता था, कोई नहीं जाते थे, कभी कभी दिवाली के दिन साल में एक बार सो घर खोल करके सफाई पोछाई करते हैं लिपापोती, तो किए थे वो छोटी बालिका थी अपने सखियों के साथ, वहाँ भी चली गई, कोई सफाई हम भी मदद करेंगे, देखे कि लोग आते हैं उसके चारों तरफ सफाई करके चले, उसको कोई छूतने की, इतनी भारी था कौन करेंगे, वो पूछी भाई वो इसे टेढ़ा रखा हुआ है क्यों, धनुष रखे थे वो टेढ़ा ही था, तो उसको इतने भारी कोई सीधा ही नहीं कर पा रहे थे कई पीढ़ी से, तो बोला है सफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक से सफाई नहीं किए ना, सफाई कौन करेगा, उसको कौन उठाएगा, ऐसे रखा हुआ, तो बोला इसे किसे नहीं होगा। तो आपने सहेली के साथ गई, छोटी बालिका थी, जाकर बाएं हाथ से धनुष को उठा दी, उठा करके फिर यहां रख कर सफाई कर, फिर उठा के सीधा कर रख दी उसको, न करे आगे किसी बोले नहीं। सफाई होने के बाद दूसरे दिन बोले सब साफ सुफ हो गया, जनक महाराज इंस्पेक्शन जाते हैं, जाकर देखते धनुष सीधा कैसे रख गया, मेरे जन्म से पहले ही इसे टेढ़ा रखा हुआ था, उसको हाथ नहीं लगाते थे, ये सीधा कैसे हुआ, सबको पूछे सुनी बोली अरे बा उनको कौन हाथ लगाएगा इतने भारी से, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा, पता लगाया कौन कैसे कैसे कैसे, बोले हम तो नहीं कहते सभा करके आ गए, वो पूछ रही थी आपकी बेटी, पता नहीं बेटी कोई विश्वास ही नहीं कर सकती, तो उनको सीता जी की छोटी बेटी के साथ उनके जो सहेली थी उनको पूछे, बोले कैसे ना उन्होंने की, कैसे ना हमारे सामने बाह से उठा कर रखी, फिर साफ कर फिर रख दी सीधा करके, जनक महाराज अपने कान को विश्वास नहीं कर सकते थे। एक छोटी सी बालिका मेरे पूर्वजों से जो इतने महान धनुष शंकर धनुष जिनको हजारों हजारों महाबली सैनिक उठा नहीं सकते, कितने विशाल मंजूषा में उसको नहीं पाते, उसको इसी उठा के खेल खेल में धर दी। तो बेटी को पूछे हाँ उन्होंने कर रहे थे मैं क्या करूँ, साफ कर दी। अरे बाप रे बाप, जनक महाराज तो प्रणाम कर लिए, बोले बेटी आप जान गया तू अभी मैं किसको शादी दूंगा तुझे। जब इसी बालिका के उम्र में आपने इसी महाधनुष को इस प्रकार खेल खेल में उठा करके रख दी तो आपके पति तो कोई साधारण ऐसे पुरुष नहीं होना चाहिए, कम से कम आपके समान तो हो, आपसे बड़े नहीं हो, कम से कम समान तो हो, नीचे तो नहीं होना चाहिए। तो उसी दिन से उन्होंने पढ़ लिए किसी अजनिजा मेरे बेटी को कोई विवाह करना चाहता है तो उसके धनुष को उत्तोलन करके उसे प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ेगा तब जा करके। यद्यपि वो स्वयं शंका में थे कि क्या वो संभव है, लेकिन ये जब कर डाली तो उनके लिए कोई होगा, ये संकल्प कर लिए। और कितने बार पूरे विश्व से बड़े बड़े कुमार आए भगवती सीता के समर उनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई टसम, रावण आदि भी सब आए थे, बड़े बड़े असुरराज देवराज मनुष्य आदि सब आए थे, लेकिन कोई उसको टस से मस नहीं कर पा रहे थे। अंततः एक बार तो एक युद्ध भी हुआ था, सारे राजा मिलकर के जनक के विरुद्ध युद्ध किए, बोले ये क्या कर रहा है, बेटी की शादी नहीं कर रहा, हमको अपमानित करा रहा है। सब मिलकर के बोले अटैक करके किडनैप करके ले जाएंगे, अटैक किए। तो जनक जी देवताओं को प्रार्थना किए, देव बल से उन्होंने उनको उनसे मुक्त हुए, उनको हटाए, लेकिन बड़े शंका में थे क्या करें। तो अंततः जब विश्वामित्र ने पहुंचे, ये तो गए थे धनुष देखने के लिए, जाके पहुंचे जनकपुर में और जनक महाराज विश्वामित्र जी उनके साथ आए हैं, दो कुमार को देखे, देख करके उनके बारे में पूछे कौन है कैसे, लेकिन एक एक टक देख रहे थे क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण की सौंदर्य इतने असीम सुंदरता था, रूप पराकाष्ठा था हर अंग में, तो उनको देख रहे थे। पूछे जब पता चला अभी दशरथ नंदन है ऐसे है और धनुष को देखना चाहते हैं, आप सुने बड़े प्रसिद्ध धनुष है तो देखने के लिए इच्छा है तो धनुष दिखा देंगे, धनु दिखाऊंगा, ये बात कहकर धनु दिखाते नहीं, धनु के महिमा बताने लगे और सब बताने लगे, धनु दिखाते नहीं। क्यों? क्योंकि मन में विश्वास नहीं हो रहा था, ये छोटा सा बालक अब तो कुमारावस्था था, वो 15 साल के 16 साल के उम्र थे, 15+ था, अब ये अति सुकुमार, इतने सुकुमल, इतने सुंदर शरीर वाले कुमार ये विशाल धनु को देखेगा। धनु का महिमा तो बता दूं, पूरे धनु का महिमा बताया, सब कुछ बता करके ये विश्वामित्र बोली क्या टाइम खराब करता, तो दिखाओ तो सही ना, उनको देखें, उसमें प्रतिज्ञा किया हो धनुष में, क्या प्रतिज्ञा किया है, क्या कोई धनुष उत्तोलन कर दे उसमें अगर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मेरे अजनिजा बेटी भगवती सीता को मैं उनको समर्पण करूंगा, ये संकल्प है। तो बात अलग है, वही शादी भाती की बात ना करते, वो देखना चाहते हैं दोनों कुमार, दिखा दो बहुत टाइम से, फिर दिखाए उनको। तो भगवान राम धनुष देखने गए, देख करके परमिशन पूछे, कितने सीरियस मान, बोले मैं उसको थोड़ा टच करके देख सकता हूँ, छू करके, क्योंकि आजकल सब एक म्यूजियम में लिखा रहता ना डोंट टच, तो बोले इसे पता नहीं चलता कैसे धनुष क्या है, कब से थोड़ा टच करके देखूं। हाँ हाँ अगर शक्ति है तो उत्तोलन में करके देख सकते हैं। तो भगवान राम भी सभी के सामने आश्र सब देख रहे थे, वो भी खेल खेल में बाएं हाथ में उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास किए, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट गया। अब क्या था, जो जिसका था। तो इस प्रकार सीता जी को प्राप्त किए थे भगवान राम ने। तो कितने महान थी वो, जिनकी थी, जिनके हैं वही है शक्ति, उनको प्राप्त किए। उन सीता इतने सुकुमारी थी, उनको सचमुच रामायण में कई जगह में वर्णन आता है, रामायण केवल रामचरित नहीं है, वो सीता चरित है। सीताया चरितम महान, भगवान तो भगवान है ही है, लेकिन भगवान के सेवक, उनके सेविका के प्रमुख के रूप में सीताजी भगवत सेवा में कितने शक्ति संपन्न है, उनका भी पराकाष्ठा है रामायण में। श्री सीताजी अब राजकुमारी है, उनको अयोध्या में वधू के रूप में आने के बाद अभी थोड़ी ही दिन में जो अति शुभ समाचार उनको प्राप्त हुआ कि युवराज राम को युवराज पद प्राप्ति होगा, इसके लिए महाराज ने घोषणा कर दिए, पूरे नगर में साज सज्जा और सारे व्यवस्था हो रहा है, यहाँ तक कि वशिष्ठ ऋषि आकर के बोले कि आज रात को आप नियम में रहिए, काल उपवास व्रत रखें, सब नियम बताए कि काल आपका अनुष्ठान होगा, राज्याभि अभिषेक अनुष्ठान होगा, इसलिए इसे पूर्व क्रिया से करना। अब शाम को बताकर गए व्रत नियम रखने के लिए, सुबह सुबह जो घटना आप जानते हैं जो हुआ, भगवान को जो भी हो कई कई की चक्रांत में भगवान को वनगमन करना हुआ। और जब भगवान राम को पता चला तो उन्होंने बोले ठीक है, सुबह सुबह मुझे जाना है, मैं तो जाऊंगा ही, जो सत्य तो मैं थोड़ा इतना मुझे परमिशन दीजिए, मैं जा करके माँ कौशल्या से और देवी सीता से ये परमिशन लेकर के आ जाऊँ, फिर चलूँगा। तो उन्होंने भवन में गए, आए थे रथ में, जाते समय पैदल में गए क्योंकि वनवासी के आज्ञा पालन मिल चुका था। पैदल में जा करके कौशल्या जी से तो मिली, बड़े लंबी वर्णना है कौशल्या से किस प्रकार मिली, क्या घटना हुआ, बड़ा मर्मन्तुद वर्णन है। उसके बाद में सीताजी के पास गए थे। सीताजी तो कल शाम से तैयारी चल रहा था, हजारों लोग आते, खान पान व्यवस्था बड़ा साज सज्जा, मुहूर्त अभिषेक का मुहूर्त आ रहा था, उन्हें अपेक्षा कर रहे थे, प्रभु गए अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तो समय हो रहा है अभिषेक का। लेकिन अभी भगवान राम जो महल की ओर आ रहे हैं, उनका मुख में थोड़ा विकार था, मान वदन था। भगवान राम हमेशा, उनका मन में कोई विकार नहीं होता, लेकिन उनको चिंता था कि कैसे कहूँ, उनको दुख होगा, इस चिंता में सीता जी की चिंता में उनको मुख थोड़ा दुख था, अपने लिए तो कुछ दुख नहीं था। तो उसके मुंह को देख करके भगवती सीता प्रार्थना कर रहे कि ये क्या है, आपके मुख में इस प्रकार मानता कैसे है, तो कभी नहीं होता, आप चिंता से परे हैं, ऐसे कैसे, क्या कारण है। तो भगवान उनको बताना था तो बताए, मुझे वन में जाना है, वनवास लेना है। और सुन करके सीता जी बड़ी दुखी हुई और कुछ कह नहीं पाई, कहने से पहले का भगवान के पास समय भी नहीं था, जल्दी जाना था, तो इसलिए उनको बता करके और जल्दी से बताना था, बोले देखो अब मेरा ये आग्रह है कि आप, पिताजी भी अस्वस्थ हैं, माँ भी बड़े दुखी है, तो आप कर्तव्य है कि आप घर में रहो, मैं तो जा रहा हूँ, घर में रह करके सास ससुर की सेवा करना, देवर आदि की देखभाल करना, उनके इस दुखद परिस्थिति में आपका ऐसा कर्म करना, इस प्रकार रहना, और कभी भी भरत के प्रति मन में आक्रोश भाव ना रखना, कभी ना रखना, और अगर आपको ये सब निभाने में कष्ट भी होता है धर्म निभाने में, तो मेरे ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप अपने पिताजी के घर भी जा सकते हैं, जनकपुर भी जा सकते हैं, मैं 12 साल के 14 साल के बाद आ जाऊंगा। उनको इस उपदेश आदेश दे रहे थे, सीता जी रोते रोते सुन रही थी। भगवान का वचन पूरा होने के बाद सीता देवी बोली कि प्रभु मैं समझ रही हूं कि आप जल्दी में है, समय का अभाव है आपके पास, लेकिन मैं आपके सहधर्मिणी हूं, इतने तो आपका कर्तव्य है, मेरा सुना एक बार सुन लीजिए, मैं भी संक्षेप में बोल रही हूं, सुन लीजिए, सुनना आपका कर्तव्य है। तो भगवान राज भी बोले बोलो। बोले आपने मुझे जो अभी कहे कि हे जनक नंदिनी हे मनस्वी, तो क्या मेरे अंदर इतने क्षमता नहीं, मेरे अंदर इतने शक्ति नहीं, मैं इतने तुच्छ हूं कि मेरे पति जंगल में नंगे पैर में भटकेंगे, कष्ट में वनवास में रहेंगे, और मैं राजमहल में इस विशेष पलंग के सो करके इतने भोग में रहूं? आप मुझे इस दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि महामनुष्य जनक नंदिनी हूं, कैसे बात कहते हैं? मनुष्य शब्द का अर्थ ही क्या होता है? मनुष्यनी का अर्थ तो ही है कि जीवन में अगर भयंकर से भयंकर प्रतिकूल अवस्था परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में भी अगर मन टस से मस ना हो, इतनी बड़ी धैर्यशालिनी इसको धैर्य धारण करके सह जाए, वो तो मनुष्यनी। मैं जनक राज की पुत्री हूं, जनक महाराज प्रसिद्ध है लोक में, विदेह कहते हैं उनको, देह से परे, तो विदेह नंदिनी वैदेही आप भी ऐसे कहते हैं, तुम क्या इतने हीन हो? आप कहते हैं कि ये मेरा धर्म है, सास ससुर के देवर की और परिवार की देखभाल करना, आप तो स्वयं धर्म के रक्षक है, तो क्या यही एक विवाहिता स्त्री का यही धर्म है? सीता जी कहती है कि विवाहिता स्त्री के लिए तो सब कुछ उनके पति होता है, पति के नाते कोई सास होता है, कोई ससुर होता है, कोई देवर होता है, पति जो भी कुछ नाता उन्हीं के चलते होता है, वो नहीं है तो फिर नाता ही क्या? उनके सेवा कैसे करूं? सबसे प्रथम कर्तव्य की विवाहिता पति का, पत्नी का, कि पति को साथ दे। बोले विवाह के बाद जब मुझे विदाई कर रहे थे, मां ने पिताजी ने बार बार मुझे यही शिक्षा देकर भेजी थी कि बेटी आज से ये आपके सर्वस्व हैं, उनके सहगामिनी सहधर्मिणी होकर रहना, उनके सुख में सुख, उनके दुख में दुख, यही शिक्षा देकर भेजे थे। तो आप जाएंगे वन में दुख में भटकेंगे, मैं राजपलंक में सुख लौटूंगी, कैसे कहते हैं? तुम्हें किसी प्रकार नहीं। तो राम तो फिर क्या चाहती है आप, इतने क्यों रहती, क्या चाहती है? हम मानता हूं ये धर्म है पति से, लेकिन मैं आप इतने सुकुमार जी है, आप कभी जंगल देखा भी नहीं, और किस प्रकार जानेंगे? तो सीता जी ने कहती है कि आप मेरे लिए पूछते हैं कष्ट की बात, धर्म पालन की बात, मेरे लिए तो सबसे कष्ट होगा अगर आपसे अलग रह करके इस प्रकार सुख में रहूं। और जहां तक धर्म की पालन की बात आप कहते हैं, उपदेश देते हैं, आप अगर कठोर आदेश में बोलते नहीं तू नहीं जा सकती, तो मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन आज्ञा पालन करके मैं अगर धर्म भी तो पालन नहीं कर पाऊंगी, कैसे? क्योंकि आप चले जाएंगे, आपके बिहन से एक सेकंड में प्राण नहीं रहेगा, ये शरीर प्राणहीन होकर गिर पड़ेगा, तो प्राणी सब सब कोई इस धर्म कैसे पालन करेगा? सबका शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि धर्म पालन करे। जीवित होना चाहिए, जीवित जीवन तो चला जाएगा, प्राण निकल जाएगा आप जाते ही, तो इसलिए आपका आज्ञा भी पालन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मत कहिए। तो वास्तविक स्त्री धर्म जो है उसको मुझे करने दीजिए। आप मेरे कष्ट की चिंता कर रहे हैं, मैं इस राज सुख से कई कोटि गुना अधिक सुख मानूंगा। आप जब जंगल में जाएंगे नंगे पैर में, मैं आपके आगे आगे चलूंगी, आगे आगे चलूंगी, मैं भी बिना पैर में चलूंगी। भगवान मानो कहे तू आगे आगे जंगल दिखा कभी तुमने, रास्ता पता है तुझे? आगे आगे चलेगी, रास्ता पता नहीं का कोई आइडिया नहीं, आगे आगे कैसे चलेगी? क्यों आगे आगे चलना चाहती हूँ ना? इसलिए आगे आगे चलना चाहती हूँ कि आप भी बिना पद त्राण में जा रहे हैं, आपके इतने सुकुमल पैर है, चरण है, जिसको मैं दबाने के लिए, चरण संवाहन करने के लिए कभी जाती हूँ, मेरे हाथ लगने से कष्ट होगा, इसलिए मैं भी डरती हूँ। इतने सुकुमल चरण, और उसको लेकर के आप जंगल में खुले पैर में इस कंकण पत्थर के ऊपर चलेंगे, आपको कितने कष्ट होगा, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ उसको, चिंता भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी, ताकि आपके पैर के आगे जो कंकण पत्थर कंटक है उसको मैं सब तोड़ ताड़ करके साफ करूंगी, आप पीछे पीछे से। बोले आप, आपके चरण क्या इतना कठोर है? बोले मेरे चरण तो कठोर भी नहीं है, आप भी राजकुमार तो मैं भी राजकुमारी हूं, जंगल हम दोनों ही नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा जो शक्ति है, सुन लीजिए, मेरा शक्ति क्या ना, आपके श्री चरण की एकांत अनवरत स्मृति स्मरण, उसके चिंतन जो मैं शक्ति है, इस शक्ति के बल से ये कंटक में कंकण में पथ को मैं समित कर दूंगा, इस शक्ति की वजह से, इस शक्ति की वजह से मैं आगे आगे चलूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो भगवान राम को विवश होकर के एस करना पड़ा। भगवान राम के भगवत्ता नमित हो गया उनके संकल्प के सामने, उनको लेना पड़ा। और जंगल में जबकि आगे आगे नहीं चली, बीच में चली, रख करके गए, भगवान भी अपना कार्य पूरा करेंगे, लेकिन सभी जानते हैं भगवान राम कितने शीलद स्वभाव है उनका, कितने करुणामय है, कितने सरल हृदय है, वो कैसे आपने प्राणबल्लभा के प्रति इतने कठोर व्यवहार कर पाएंगे, कदापि संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने केवल ये संपूर्ण संसार के स्त्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देने के लिए श्री जानकी जी के चरित्र के द्वारा ये शिक्षा देने के लिए उनके प्रति ऐसे व्यवहार किए, कठोर परीक्षा। 14 बरस लंका के एकाकिनी अशोक वाटिका में बिताने के बाद भगवान राम रावण निधन के बाद जब सीता जी को मुक्त करने के लिए भेजे कि जाओ सीता जी, और भरी सभा, विभीषण आदि सारे वानर मनुष्य सब बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, सीता जी आई, तो उनको अंगीकार तो करना दूर की बात है, पूरे समाज के सभी के सामने भगवान राम ने सीता जी को बोले, हे सीते, मैं एक राजा का कर्तव्य किया, एक क्षत्रिय की कर्तव्य किया कि अपने पत्नी के इस प्रकार के जो अपहरण करने वाले को उसका उपयुक्त शास्ति दिया, ये सब किया, लेकिन जहां तक आपको अंगीकार करने का प्रश्न है, क्योंकि आप ये दुराचारी राक्षस रावण के यहां इतने साल रहे, तो मैं कैसे आपको स्वीकार कर सकता हूं, आपके पवित्रता के परीक्षा देना होगा। भरी सभा में सबके सामने, आजकल के शिक्षित युवती अगर किसी को ऐसे कह दिया जाए तो साक्षात चंडी रूप धारण कर लेगी। हाँ, क्योंकि अकेली कह दे तो बात है, पब्लिक के लिए 10-20 पब्लिक के सामने कोई कह दे, वही स्त्री की पवित्रता तो स्वयं हो जानी, नहीं तो सर्वांतर जाए भगवान को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर बोल दे तुरंत तो चैलेंज कर डालेगी। लेकिन धन्य है भगवती सीते, भरी सभा में एक शब्द भी उच्चारण नहीं की, उन्होंने केवल यही कही है प्रभु अगर आपके आदेश है मैं परीक्षा दूं, ठीक है मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लक्ष्मण तैयार करो। सूखी लकड़ी के इकट्ठा करके अग्नि संयोग किया गया, सभी के उपस्थिति में सभी के सामने देवी सीता ने भगवान के श्री चरण को स्मरण करती हुई अग्नि को प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके सबके देखते देखते अग्नि प्रवेश कर गई। आज तक इतिहास में अति अद्भुत अभिनव घटना हुआ जो शायद अभी तक नहीं हुआ होगा, साक्षात हव्यवाहन अग्नि वो शीतल हो गई भगवती सीता के स्पर्श प्रवेश, साक्षात अग्निदेव प्रकट होकर के सीता को लेकर बोले ये परम पवित्र है उसके लिए, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले मैं साखी दे रहा हूं वो पवित्र है। इस प्रकार भगवान उनको लेकर के आए, केवल इतना नहीं उससे भी और कठोर परीक्षा। जब वाल्मीकि आश्रम से वापस आए अंतिम चरण में, वो भी भरी सभा में भगवान राम के वैदेही, आज मैं लोकापवाद के लोक अपवाद के भय से भयभीत होकर के दोबारा आपके पवित्र आत्मा को जांच करना चाहता हूं। अनंत कोटि प्रणाम है जनक नंदिनी सीता के चरण में, उन्होंने अपने मन में एक अर्थक क्षण के लिए भी कोई आक्रोश आपने प्राण जीवन धन श्री राम के लिए नहीं लाई, किसी प्रकार के विचार नहीं लाई, ना कैसे इसे बार बार करते मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, नहीं किसी भी प्रकार से मन में विचार नहीं। वो तो नहीं कह रही थी उस भरी सभा में असंख्य ऋषि मुनि राज कर्मचारी प्रजा भरे थे, उसके बीच में उद्घोष करते हुए परम पवित्र महामुनि श्री वाल्मीकि जी कूद पड़े और उद्घोष करके कहने लगे वैदेही नहीं बोलेगी, वो बोलेंगी नहीं, मैं बोलता हूं उनकी ओर से, मैं बोलता हूं कि मैं संपूर्ण जीवन कठोर तप किया हूं, वेद के स्वाध्याय किया हूं, सधर्म व्रत आदि आचरण किया हूं, अगर ये सीते के अंदर अणुमात्र भी अपवित्रता हो तो मेरा संपूर्ण त्याग तप तुरंत भस्म हो जाए। मैं वादा करके कहता हूं ये परम पवित्र है, इतने पवित्र है उनके स्मरण मात्रेण, उनके स्मरण उनके नामोच्चारण मात्रेण संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने का शक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन उनके उद्घोष को भी कोई माने नहीं रखे, सब चकित होकर देख रहे थे, भगवती सीता कुछ नहीं कही, सबके सामने वही हाथ जोड़ कर नहीं प्रभु आप चाहते हैं मैं पुनराय परीक्षा दूं, ठीक है अभी तो राजभवन के अंदर आग नहीं लगा सकती, आप माता धरती को प्रार्थना की, हे धरती माता अगर मैं प्रकट होने से अद्यावधि आज पर्यंत इसी क्षण पर्यंत मेरे पति श्री राम के अलावा कोई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन किया हूं, स्मरण किया हूं। अगर ना किया हूं तो आप आपके गोदे मुझे स्थान दीजिए। तो सबके देखते देखते भगवती सीता धरती की बेटी थी, धरती में गोद में चली गई। तो इस प्रकार के आचरण, इस प्रकार के सीढ़ स्वभाव, पतिव्रता, सहनशीलता आदि आदि, ये जो नारी धर्म है, इसको जगत में शिक्षा देने के लिए भगवान अपने सहधर्मिणी सीता के द्वारा इस प्रकार के लीला करते हैं। नहीं तो भगवान को सर्वज्ञ है, उनको तो पता है कि वो क्या है, उनको पता है। तो समाज के नारी एक महान शक्ति, जिनको इस प्रकार नियमित होना चाहिए, इसलिए उनको भगवती सीता के चरित्र, सावित्री मादाला साजी चरित्र को आस्वादन करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। समाज को पवित्र और उन्नति के रास्ते में ले जाने के लिए नारी जाति के जितने आवश्यकता है, जितने उनके उत्तरदायित्व है, शायद और किसी का होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, जननी जन्मनाम गुरु हो, वो असली गुरु तो जन्म से हुई होते हैं। तो उनके चरित्र भगवती सीता के चरित्र से, उनके व्यवहार से पता चलता है किस प्रकार। ऐसे अनेक अनेक घटनाएं हैं देवी सीता के चरित्र में, जिसमें अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक शिक्षाएं। तो इस प्रकार श्री सीता जी की आज प्राकट्य तिथि सीता नवमी है। ऐसे कहते हैं कि अभी भी बिहार के एक प्रांत है जहाँ पे सीतामढ़ी करके एक स्थान है, कहते हैं वही स्थान है, वो मिथिला के अंतर्गत आता है। आजकल तो सब अलग हो गया, नेपाल इंडिया नहीं, तो पहले तो एक ही था जनक राज्य के अंतर्गत। तो सीतामढ़ी स्थान जहाँ पर जनक जी ने भूमि कर्षण किए थे, वहीं स्थान से प्राप्त हुई थी सीता देवी, कहते हैं। तो इस प्रकार भगवती सीता की प्राकट्य तिथि है, अति पवित्र स्थिति। तो आज इस पवित्र तिथि में भगवती सीता के इस चरित्र को मनन करके, चिंतन करके, उनके चरण में प्रार्थना करके, किस प्रकार उनका धैर्य, किस प्रकार उनके चरित्र, किस प्रकार उनके भावना था, इसको तो हम प्राप्त करने का साहस दुस्साहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं कि कुछ अंश भी इस प्रकार के भावना, इस प्रकार के मनन चिंतन अगर हमारे हृदय में हो तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। तो आज ऐसे श्री जानवा देवी, उनका भी आविर्भाव तिथि मनाते हैं। श्री जानवा देवी श्री नित्यानंद प्रभु के शक्ति हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जन्म से अवधूत थे और बड़ी आयु में भगवान बोले उनको फिर गृहस्थ धर्म में जाने के लिए। यदि भी भगवान से सीनियर थे, बड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान के सेवक थे, तो इसलिए आज्ञा का पालन किए थे। उनके विवाह बड़े नाटकीय भंग से हुआ था। बंगाल में स्थान है, तो वहां एक भगवान गौरांग के पार्षद सूर्यदास सरखेल, जिनके भाई गोरीदास, गोरीदास तो छोड़कर आकर घर में शादीशुदा नहीं किए थे, व्यस्त धर्म से वैराग्य लेकर आके भजन कर रहे थे। अंबिका कालना में जगह है उनका, वहाँ पंडित गोरीदास अपने आश्रम करके वहीं भजन कर रहे थे। उनके भाई सूर्यदास सरखेल जो शालिग्राम में रहने वाले थे, वो एक बहुत बड़े राजकीय पद पर काम कर रहे थे। उनके दो बेटी थे सूर्यदास पंडित के, वसुधा और जाह्नवा। और वसुधा जी के विवाह के हुआ, दोनों की बेटी के विवाह के समय आ चुका था, तो हमने कई ढूंढ रहे थे योग्य पात्र, कई पात्र ढूंढ, किसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से ये नहीं मिलता तो ये मिलता है, ये मिलता तो ये नहीं मिलता, इसी कारण से नहीं हो पा रहा था। तो बस ज्यादा हो रहा है, पहले जमाने में अगर 16 साल ऊपर बेटी घर में रहते हैं तो बड़े बोलते नहीं बहुत लेट हो, तो चिंतित थे। नित्यानंद प्रभु आए थे उस क्षेत्र में, तो किसी ने बताया कि मैंने सुना कि वो नित्यानंद प्रभु भी विवाह के लिए इच्छा है, तो क्यों नहीं उनको प्रस्ताव लिया जाए उनके पास। तो उनके पास प्रस्ताव लिए राजू इमीडिएट, हाँ चले। तो नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम है, उनके रूप का तो कोई समान नहीं हो सकता। तो उनको दर्शन करके बोले हाँ तुम राजू, बोले ये सुंदर ऐसे हमारे तमाद होंगे आए। लेकिन जो उनके ज्ञाति कुटुंब थे, वो तो बड़े घर के थे ना सरखली, तो उनके ज्ञाति कुटुंब बोले कैसा उनको शादी करेगा भाई, उनके घर घर का पता है कौन सा जात है पात है क्या है, कर में कुछ नहीं पागल घूम रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे आप, अगर उनको शादी करेंगे हम आपको जाति से बैकट कर देंगे। उनका कोई पता नहीं है क्या है बाबा जी उसका, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, ना घर ना घाटी जात पात कुछ नहीं, उसे कैसे करेंगे आप जाकर पूछे वो क्या बताएंगे जात पात, कौन पूछेगा वो उनको। तो इसलिए फिर प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, विवाह नहीं कर रहे थे। नित्यानंद को पता चला कि वो बात करके फिर हट गए, और मेरा जात पात कुछ पता नहीं इसलिए हद नहीं करना चाहते। तो वसुधा माता को बीमार हो गया, इतने भयंकर व्याधि हुआ कि कितने चिकित्सा करने पर ठीक नहीं हुआ, तो अंततः मरने पर नौबत आई। तो लोग बताने लगे हो ना हो शायद ये साधु के साथ विवाह लगा था, वो तो गुस्सा नहीं होगा इसके कारण तो उसी दिन से हो रहा। लोग बोले हाँ होगा, कर सब ज्ञाति कुंड बोले भाई मर जाएगी अब क्या अब नायन कान, बोले भाई चलो जाके बताओ शायद हो ना हो वो शादी की बात होने से ठीक हो जाए, बाकी ठीक हो ही नहीं रहा। तो सम्मान करके फिर उनके घर के लोग गए, बोले वो हाथ जोड़ के बोले ऐसा ऐसा लेट हो गया, ऐसे हम चाहते हैं अब विलंब ना करें शादी। तो उनका हमको खुश हो गए ये खबर आके पहुंचा तो बिना मरीज में ठीक हो गए, वो भी खुश हो गए, कोई थी ठीक हो गए, अब लेट ना करना चाहिए, सब खुश हो गए, बोले सचमुच यही कारण था। तब उनको बुलाए, अब वहां तो ऐसे कन्या के घर में बर आएगा, बर आए बर के साथ तो सारे कोई सब ऐसे थे उत्पटांग साधु बाबा सब आए। आ करके जो भी सूर्यदास सरखल, उन्होंने अपने भाई भी आए गौरीदास पंडित थे, उनको मित्र थे बाल्य साथी थे गौर नित्याय के, वो भी आए। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वसुधा के साथ विवाह होने के बाद जो बैठ करके भोजन करा रहे थे सबको, अब उनके जो भोजन में उनकी जो छोटी बहन थी जानवा, वो उनके क्या लगेंगे साली लगेंगे, तो वो भी परिहास में परिवेषण करने के लिए आती थी, कई आइटम देती थी, वो परिवेषण करते से वही रास्ता होकर जाती थी, उनके साड़ी की जो क्या पल्लू बोलते हैं वो लगता था, एक बार लगा वो देखे खूब मिक्स डिस्टर्ब करे खाने में, फिर आई फिर लगा तो भगवान नितान्त प्रभु ने साड़ी की पल्लू पकड़ खींच लिया, उसको डिस्टर्ब कर रहे बैठा दिए। तो उनके पिताजी नाना ताओ दौड़ कर है क्या गया को गया, क्योंकि जानते हैं ये, तो बोले देखो तू मुझे आपके कन्यादान किया ना लेकिन अभी दहेज नहीं दिया ना, दहेज आपको मेरे घर मेरे प्राण जीवन संपत्ति सब कुछ है आपका, मैं तो आपका ही हूं आपको क्या दहेज दू। बोले ये सब नाटक नहीं चलेगा, आप बोलो क्या चाहिए ना, मुझे इस सब लेकर क्या करूं, मेरे घर घाटी मेरी जरूरत नहीं है, इस सब लेकर क्या करूं, क्या दहेज ना, इसको तो दान क्या उसको दहेज में दो, ये दूसरी बेटी को तो दहेज में जन्म दिल को ले लिया, बोले इसको चाहिए मुझे डावरी में। तो उनको भोजन करते समय बैठा दी, बोले चलो अभी तो दोनों ले लिए, तो ऐसे स्वीकार किए थे भगवान ने, जो भी हो जन्मा देवी भगवान की शक्ति, भगवान स्वयं खींच कर स्वीकार किए। यद्यपि वसुधा माता के कई पुत्र हुए, कैसे पुत्र निधन हुए बीरचंद्र कृष्ण, जन्मा माता नित्यानंद प्रभु के अप्रकट के बाद में उन्होंने पूरे वैष्णव समाज के आधिपत्य स्वीकार की, नेता उन्होंने बनी, सखा नित्यानंद प्रभु के शक्ति थे, तो उन्होंने, उनके भी कई शिष्य हुए। एक बार उन्होंने नवदीप से वृंदावन आने लगे, क्योंकि पूरी मायापुर वृंदावन तीन वैष्णव के हेडक्वार्टर होता था, तीनों जगह के मुख्य वही माने गए जानवा देवी। आज भी आप राधा कुंड जाएंगे वहां पर जानवा देवी का बैठक है, समझा हेडक्वार्टर, वो भी आई थी वृंदावन। तो उनके साथ में उनके जो प्रमुख सेवक शिष्य रामायण पंडित भी आया करते थे, उनके सिद्ध सेवा करते, तब जहाँ तो पैदल में आते थे और वो पालकी में आती थी जानवा देवी, बाकी सब सेवक बहुत उनके साथ आए शिष्यगण। वृंदावन में भ्रमण किए कई जा करके अंततः तब गोपीनाथ मंदिर था, और गोपीनाथ मंदिर के बाद आएगा मधु पंडित के ठाकुर है गोपीनाथ जी, उनका वही दिथि है। तो गोपीनाथ मंदिर के दर्शन में गए, गोपीनाथ के पुजारी, अब आरती का समय हो रहा था, मध्यान्ह आरती का समय, और जानवा देवी प्रकट हो सुधर गए, तो भाई पूरे सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं वैष्णवी हैं, तो मैया आप आरती करेंगे? अच्छा ठीक है कर लेते हैं, जैसे कोई सीनियर आते हैं बोलते ना आरती करो गाओ पूजा करो, तो उनके भी बोले, तो जानवा देवी जी ठीक है मैं कर लेती हूँ आरती। तो आरती करने के लिए जाकर शंख बजाई, अब आरती की, आरती करने के बाद में अब जो फूल दे करके उनके चरणों में फिर आकर फूल देना होता ना, देख रहे आगे भगवान गोपीनाथ खींच लिए उनको, गोपीनाथ ने खींच लिए, खींच कर उनके बाजू में खड़ा कर दिया। आप वही खड़ गए, वो आए नहीं, वही विग्रह बनकर वही रहेंगे जानवा देवी। अभी भी श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे और राधा रानी के जागा में जानवा देवी है, राधा जी साइड चेंज करके इधर आ गई सखी की जगह, वो पोस्ट जानवा जी देवी, मतलब वो कौन थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जानवा देवी महाभ्रमण, तो उनके जो सेवक रामायण पंडित है उन्हें लगी कि मैया क्या हो गया अभी, आप तो क्या करूं मैं, क्या करूं, रोने लगी सर पीट करके कैसे जाऊं क्या करूं। तो उनको बोले कोई बात नहीं बेटा, मुझे गोपीनाथ ने रख लिए, तुम जाओ जमुना स्नान करो और तुम्हारा काम बन जाएगा, जाओ। रोते रोते वो गए रामायण पंडित जमुना किनारे स्नान करके, बोले क्या बोली जमुना स्नान करके क्या करूं, जमुना के किनारे मृत समय देखे कि एक कृष्ण बलराम विग्रह प्राप्त हुए उनको, बस उस विग्रह को सेवा करते करते बोले मैं जाऊँ लेकर जा रहे, तो विग्रह अभी भी हैं बंगाल में ले जाओ जो भी हो। तो ऐसे श्री जानवा देवी साक्षात नित्यानंद प्रभु के शक्ति, तो उन्होंने गोपीनाथ के साथ अभी भी वो परमेश्वरी हैं, और उन गोपीनाथ के प्रकट कराने वाले जो मधु पंडित आज उनके भीतर भाव दी थी। श्री मधु पंडित ने अभिन्न गौरव पार्षद श्री गदाधर पंडित के प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे मधु पंडित। और जब गदाधर पंडित के विशिष्टता था, साक्षात भागवत पुरुष थे श्रीमन महाप्रभु, जब तक निराचल निवास कर रहे थे प्रतिदिन दिनचर्या था, दोपहर के बाद जाते थे तोटा गोपीनाथ में बैठ करके भागवत श्रवण करते थे। और भागवत वही जो पोथी था, तो बुक्स था नहीं, तो वही पढ़ते थे डेली डेली श्री गदाधर पंडित, वही भागवत पाठ करते थे। भागवत पढ़ते समय इतने आंख से आंसू बहता था कि पोथी मिट गया, इतने भाव से भागवत पाठ करते, सख्यात भागवत गदाधर पंडित थे। तो उनके शिष्य मधु पंडित तो गुरु जी के आज्ञा से बोले कि मैं तो जा रहा हूं, आप जाओ वृंदावन में, और हमारे प्रभु वृंदावन में सब गोस्वामी को भेजे, जहां विग्रह प्रकट करो वहां भी जाकर विग्रह प्रकट करा। तो उन्होंने पूरी से कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण दर्शन करने के लिए इच्छा लेकर के गुरु आज्ञा को सर में धारण करके चले। चलते चलते रास्ता में कुछ शक्ति संबल नहीं था उनके पास, एकमात्र संपत्ति एकमात्र संबल था क्या, भगवान के स्मृति और भगवत सेवा प्रेम, इसी को संबल करके आए, आकर के वृंदावन में ढूंढते रहे। अब जानते हैं कि गोविंद तो प्रकट हो गए, मदन मोहन को प्रकट करा दिए, लेकिन गोपीनाथ कहाँ है? गोड़ियों को तो यकीन है। तो उन्होंने पूरे ब्रज में घूमते 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 और नहीं मिले। एक बार जमुना के किनारे बोले, ना भगवान मेरे से रिश्ते नहीं है, अगर भगवान प्रसन्न होते तो प्रहलाद के लिए एक खंभा से निकल पड़े, मेरे लिए वृंदावन से पकड़ने होते। ऐसे विकल रोदन करके जब जमुना तट पर मूर्छित होते थे तो इस समय उनको भगवान के दर्शन हुआ। जब इस स्थिति में आता है तब तो भगवान दर्शन होते हैं। तब तो देखे उन्होंने जमुना किनारे वो बंसी वट के नीचे और ठाकुर जी के दर्शन हुआ। श्रीमान रास रसारम ही बंसी बट तटस्थित करसन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ न। उस वंशी वट के नीचे वेणु बजाने वाले श्री गोपीनाथ, गोपियों के नाथ, उनको दर्शन किए। उसने तो प्रेम से पागल होकर के मधु पंडित जा करके उनको पकड़े। भगवान भी भक्त के बस में उनको भी दोनों दोनों को आलिंगन किए, दोनों दोनों का आंसू वर्षा किए। तो भगवान तो बड़े चंचल है, तो उन्हें फिर चला जाना चाहते थे क्षण में, लेकिन मधु पंडित बोले, छोड़े नहीं बिल्कुल, बोले नहीं प्रभु, इतने बड़े कष्ट से आज आपको पाया हूं, आप अगर फिर मेरे से बिछुड़ जाएंगे मैं प्राण नहीं धर पाऊंगा, फिर मर जाऊंगा मैं। तो क्या चाहता है ना, आप अगर जाना चाहते हैं तो मुझे भी साथ में ले जाइए, नहीं तो रखना चाहते मेरे साथ ही रहिए। भगवान बोले, मैं तो वृंदावन में रहता हूं ना, तो मेरे साथ रहिए। बोले ठीक है, मैं इसे तो नहीं रह सकता, तो विग्रह के रूप में रहता हूं। तो साक्षात विग्रह के रूप में वंशी बड़ा तट स्थित होकर के गोपीनाथ के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उस गोपीनाथ विग्रह को उसी मधु पंडित ने ला करके आप मंदिर निर्माण करके उनको अपने आराध्य देव करके पूजा किए। आज इस मधु पंडित के आराध्य देव श्री गोपीनाथ जी जयपुर में है, वही उनका आराध्य साक्षात प्रकट विग्रह गोपीनाथ। तो इसे उनके जो अद्भुत भक्ति, उनके जो कातरता, उनके सेवा भाव, भगवान के प्रति कितने उनके व्याकुलता था, जिसके कारण भगवान बाध्य होकर उनके सामने प्रकट हुए। केवल प्रकट नहीं हुए, आज तक विग्रह बन करके सेवा लेते हैं। उनके सेवा तो लिए ही, अब हम जैसे नालायक उनको दर्शन कर पाते हैं उनकी कृपा के कारण श्री गोपीनाथ जी। तो इस प्रकार इतने बड़े उच्च कोटि के महाभक्त श्री मधु पंडित, जिनके भक्ति के कारण भगवान प्रकट हो गए विग्रह के रूप में, आज तक भी हैं। तो ऐसे मधु पंडित की भी आज तिरुभाव तिथि है, तो उनके श्री चरण में भी हमारा श्रद्धांजलि के रूप में प्रार्थना करेंगे, ताकि जितने कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के प्रति जितने सेवा भाव व्याकुलता, जिस प्रकार के शुद्ध भाव उनका था, सेवा था, तो उनके अणुमात्र भी अगर उनके कृपा से हमको प्राप्त हो, तब भी हमारा एक कठोर हृदय पिघल करके पानी हो जाए, हमारा जीवन भी सफल हो जाए, हमारा भजन भी पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार आज इस भगवती सीता माँ जाह्नवा और श्री मधु पंडित के तिथि, पावन तिथि पर उनके जत किंचित उनके प्रभाव को स्मरण मात्र किए, इसे पूर्ण कर ही नहीं सकते। तो अंत में केवल इन तीनों शक्ति और भक्तों के श्री चरण में प्रार्थना के रूप में श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण। श्री मधु पंडित प्रभु की, श्री सीता माता की, श्री जाह्नवा माता की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। किसका कोई प्रश्न तो नहीं होगा शायद, न है? यस।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण जी और बलराम जी की अलग अलग गोपियां हैं, तो ऐसे नित्यानंदपुर की भार्या थी जाना माता और फिर गोपीनाथ, इसको कैसे फिर समझे?
क्या समझे?
हाँ कि जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण और बलराम जी की गोपियां अलग अलग हैं,
इसमें दिक्कत क्या?
हाँ वैसे ही जैसे नित्यानंदपुर की भार्या थी वो, तो बलराम जी के बलराम जी हैं, तो वहाँ पे जो गोपीनाथ है उन्होंने अपने साथ खड़ा किया।
हाँ तो ये गोपीनाथ, ये जो गोपीनाथ जानवर के लिए वो बलराम रूप में होंगे, तो वो भी गोपी है ना, जो बलराम के जो प्रेयसी थे वो भी क्या गोपी नहीं थे, वो ब्राह्मण थे क्या? वो भी तो गोपी थे ना, उन गोपियों का नाथ क्या कहा जाएगा? बोलिए तो ही गोपीनाथ है जानवर, है ना? ओके